एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
चलने लगी फिर अचानक से आई तूफान, लहरें भी उठने लगी, डर से कहने लगे क्या होगा अपना हाल, मौत की इन लहरों से साथ साथ तू है। एक इशारे से सब कुछ हो गया शांत, तूने ये क्या किया, ये क्या किया, तूने ये क्या किया, ये क्या किया। साथ साथ तू आज भी साथ साथ तू है, एक इशारे से सब कुछ हो गया शाह, उस वक्त साथ साथ तू था, आज भी साथ साथ तू है, एक इशारे से सब कुछ हो
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, और तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चला कि हम तेरे वचनों के अनुसार चल सके। मेरे संग हो पिता, मुझे पवित्र आत्मा विशेष रूप से दे ताकि मैं तेरे वचन को तेरे सामर्थ के द्वारा बोल सकूं, और हरेक सुनने वालों के संग हो पिता, तेरे वचन को सुन करके आशीष पाने सके और तेरे राहों में चलने सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है सबत का पालन। हम पढ़ते हैं निर्गमन 20:8 में, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हमें सप्ताह भर सबत के विषय में सोचना चाहिए और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए इसे मनाने के लिए आवश्यक तैयारी करनी चाहिए। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम सप्ताह के दौरान अपनी ऊर्जा को इतना समाप्त ना करें कि हम सबत के दिन उसकी सेवा में संलग्न ना हो सकें, क्योंकि सबत परमेश्वर के साथ विशेष सहभागिता का दिन है जिसमें हमें प्रसन्नता पूर्वक सृष्टि एवं छुटकारे के अनुग्रही कार्यों का उत्सव मनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम ऐसी हर चीज से बचें जो उसके पवित्र वातावरण को कम करती है। बाइबल निर्दिष्ट करती है कि सबत के दिन हमें अपना संसारिक कामकाज बंद कर देना चाहिए। निर्गमन 20:10 कहता है, जीवन निर्वाह के लिए किए गए सभी कार्यों और सभी व्यापारिक लेन देन से बचना चाहिए। नहेमिया 13:15-22 देखें। हमें परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए, उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करें और अपनी ही बातें ना बोले, कहता है जो लिखा हुआ है यशायाह 58:13 में। इस दिन को स्वयं के आनंद के लिए समर्पित करना, संसारिक रुचियों में एवं वार्तालापों में व विचारों में स्वयं को शामिल करना या खेल कूद में स्वयं को व्यस्त रखना हमारे सृष्टिकर्ता के साथ सहभागिता को कम करेगा और सबत की पवित्रता का उल्लंघन करेगा। सबत की आज्ञा पालन के लिए हमारी चिंता उस सभी तक होनी चाहिए जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, हमारे बच्चे, वह जो हमारे लिए काम करते हैं, और यहाँ तक कि अतिथियों व जानवरों तक भी। निर्गमन 20:10 पढ़ें ताकि वे भी सबत की आशीषों का आनंद उठा सकें। सबत शुक्रवार की संध्या को सूर्यास्त से आरंभ होता है और शनिवार संध्या को सूर्यास्त पर समाप्त होता है। उत्पत्ति 1:5 इसको तुलना करें मरकुस 1:32 से। पवित्र शास्त्र सब्बत से एक दिन पहले शुक्रवार को तैयारी का दिन कहता है, मरकुस 15:42 देखें। सब्बत की तैयारी करने के लिए एक दिन ताकि कुछ भी उसकी पवित्रता को खराब ना करे। इस दिन वे जो लोग परिवार का भोजन तैयार करते हैं उन्हें सब्बत के दिन के लिए भी भोजन तैयार करना चाहिए ताकि पवित्र समय में वे भी अपने परिश्रम से विश्राम कर सके। देखे निर्गमन 16:23। जब सबत का पवित्र समय निकट आता है तो परिवार के सदस्यों या विश्वासियों के समूहों के लिए शुक्रवार की शाम को सूर्य के अस्त होने से ठीक पहले एक साथ इकट्ठा होना, प्रार्थना करना और परमेश्वर का वचन पढ़ना और इस प्रकार एक स्वागत योग्य अतिथि के रूप में मसीह की आत्मा को आमंत्रित करना अच्छा है। उसी प्रकार उन्हें शनिवार की संध्या को सब्बत का समापन भी उसकी आराधना में एकजुट होकर आने वाले सप्ताह में परमेश्वर का मार्गदर्शन व उसकी उपस्थिति के लिए अनुरोध करना चाहिए। प्रभु अपने लोगों को सब्बत को आनंद का दिन बनाने के लिए कहता है। फिर से देखिए यशाया 58:13 में, वे ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं? केवल जब वे सब्बत के प्रभु मसीह के उदाहरण का अनुसरण करते हैं, तभी वे उस वास्तविक आनंद और संतुष्टि का अनुभव करने की आशा कर सकते हैं जो इस दिन उनके लिए परमेश्वर के पास है। मसीह ने सब्बत के दिन नियमित रूप से आराधना की, सेवाओं में भाग लिया और धार्मिक निर्देश दिए। आप देख सकते हैं इसके लिए मरकुस 1:21, 3:1-4, लुका 4:16-27 और 13:10 में। लेकिन उसने केवल आराधना से कुछ ज्यादा किया, उसने दूसरों के साथ संगति की। मरकुस 1:29-31, लुका 14:1, बाहर समय व्यतीत किया। मरकुस 2:23, और भलाई के पवित्र कार्य को करता रहा। जहां कहीं वह कर सकता था, उसने बीमारों और पीड़ितों को चंगा किया। देखें मरकुस 1:21-31, 3:1-5, लुका 13:10-17 और लुका 14:2-4 तथा यहूना 5:1-15 और यहूना 9:1-14। जब लोगों के कष्टों को कम करने के कार्य के लिए उसकी आलोचना की गई तो यीशु ने उत्तर दिया, सब्बत के दिन भलाई करना उचित है, मत्ती 12:12। उसके चंगाई के कार्यों ने ना तो सब्बत को तोड़ा और ना ही उसे रद्द किया, लेकिन उन्होंने उन बोझिल नियमों को समाप्त कर दिया जिन्होंने सब्बत के अर्थ को परमेश्वर के आत्मिक ताजगी और आनंद के साधन को विकृत कर दिया था। परमेश्वर ने मानव जाति की आध्यात्मिक समृद्धि के लिए सब्बत को नियत किया। परमेश्वर के साथ संपर्क बढ़ाने वाली गतिविधियां उचित हैं। जो लोग इस उद्देश्य से विचलित होते हैं और सब्बत को छुट्टी में बदल देते हैं, वे अनुचित हैं। सब्बत का प्रभु सभी को उसके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए आमंत्रित करता है। जो लोग उसके बुलावे को स्वीकार करते हैं, वे सब्बत को एक आनंद और एक आध्यात्मिक उत्सव के रूप में अनुभव करते हैं, स्वर्ग का पूर्व स्वाद। उन्हें पता चलता है कि सब्बत का दिन परमेश्वर द्वारा आध्यात्मिक निराशा को रोकने के लिए बनाया गया है। सप्ताह दर सप्ताह सातवां दिन हमारे विवेक को सुकून देता है, हमें आश्वस्त करता है कि हमारे अधूरे चरित्रों के बावजूद हम मसीह में पूर्ण खड़े हैं। कलवरी पर उसकी उपलब्धि हमारे प्रायश्चित के रूप में गिनी जाती है। हम उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं। सिनै पर्वत से व्यवस्था की घोषणा के एक महीने पूर्व परमेश्वर ने लोगों से रोगों से रक्षा करने की प्रतिज्ञा की, यदि वे निष्ठापूर्वक उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएंगे और उसकी सब विधियों को मानेंगे। निर्गमन 15:23 और उसे तुलना करें उत्पत्ति 26:5 से। इस प्रतिज्ञा देने के तुरंत पश्चात परमेश्वर ने इसराइलियों को सब्बत की पवित्रता के विषय में स्मरण कराया। मन्ना के आश्चर्य कम के माध्यम से उसने ठोस शब्दों में उन्हें सिखाया कि वह सातवें दिन के उनके विश्राम को कितना महत्वपूर्ण मानता है। सप्ताह के प्रत्येक दिन परमेश्वर ने इसराइलियों को उस दिन की उनकी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मना दिया। उन्हें अगले दिन के लिए कुछ नहीं बचाना था, क्योंकि यदि वह ऐसा करते तो वह सड़ जाता। देखिए निर्गमन 16:4 और 16 से 19 पद भी। छठे दिन उन्हें सामान्य से दोगुना इकट्ठा करना होता था ताकि उनके पास दोनों उस दिन तथा अगले दिन शब्द की आवश्यकता के लिए पर्याप्त हो। यह सिखाते हुए कि छठा दिन तैयारी का दिन होना है और कैसे शब्द का पालन करना है, परमेश्वर ने कहा, क्योंकि कल पवित्र विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा, इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ और जो उबालना हो उसे उबाल लो और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। निर्गमन 16:23। केवल सातवें दिन ही मन्ना को खराब हुए बिना रखा जा सकता था। निर्गमन 16:24 देखें। चौथी आज्ञा की समान भाषा में मूसा ने कहा, छह दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे परंतु सातवां दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह ना मिलेगा। निर्गमन 16:26। 40 वर्षों तक या 2000 से भी अधिक एक के बाद एक आने वाले साप्ताहिक शब्द जब तक कि इजराइली जंगल में रहे, मन्ना का आश्चर्य कम उन्हें इस छह दिनों के काम और सातवें दिन विश्राम के तरीके को याद दिलाता रहा। परमेश्वर ने शब्द के आदेश को 10 आज्ञाओं के केंद्र में रखा। या इस प्रकार हम पढ़ते हैं, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, छह दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना परंतु सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना और ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी ना तेरा दास ना तेरी दासी ना तेरे पशु ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि छह दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और सातवें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। निर्गमन 20:8-11 में हम इसे पाते हैं। 10 आज्ञाओं की संपूर्ण आज्ञाएं महत्वपूर्ण हैं और किसी की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, याकूब 2:10 कहता है। फिर भी परमेश्वर ने शब्द आज्ञा को सबसे अलग किया। इसके संबंध में मानवता को उसके महत्व को भूलने के खतरे के लिए सतर्क करते हुए उसने आदेश दिया, स्मरण रखना या स्मरण रख। जिन शब्दों के साथ आज्ञा का आरंभ होता है तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना दिखाता है कि शब्द पहली बार सिनै पर स्थापित नहीं किया गया था। वे शब्द इंगित करते हैं कि इसका आरंभ पहले हुआ था। वास्तव में सृष्टि पर जैसे कि बाकी आज्ञाएं प्रकट करती हैं, परमेश्वर चाहता था कि हम शब्द को उसकी सृष्टि के स्मारक के रूप में माने। यह विश्राम और उपासना के लिए समय को परिभाषित करता है जो हमें परमेश्वर और उसके कार्यों पर विचार करने के लिए निर्देशित करता है। सृष्टि के स्मारक के रूप में शब्द पालन मूर्ति पूजा के लिए एक प्रतिकारक है, हमें स्मरण कराने से कि परमेश्वर ने आकाश व पृथ्वी की सृष्टि की है या उसे सभी झूठे देवताओं से अलग करता है। शब्द का पालन करना फिर सच्चे परमेश्वर के प्रति हमारी निष्ठा का चिन्ह बन जाता है, एक चिन्ह कि हम सृष्टिकर्ता एवं राजा के रूप में उसकी संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। शब्द की आज्ञा परमेश्वर की व्यवस्था की मुहर के रूप में कार्य करती है। साधारणगत मुहरों में 3 तत्व होते हैं, मुहर के मालिक का नाम, उसका पद एवं अधिकार क्षेत्र। आधिकारिक मुहरों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। दस्तावेज उस अधिकारी के अधिकार को ग्रहण करता है जिसकी मुहर उस पर लगाई जाती है। मुहर का तात्पर्य है कि अधिकारी ने स्वयं विधि विधान को प्रमाणित किया है और यह कि उसके कार्यालय की समस्त शक्ति इसके पीछे खड़ी है। 10 आज्ञाओं में यह शब्द आदेशी है जिसमें एक मुहर के महत्वपूर्ण तथ्य पाए जाते हैं। यह 10 में से मात्र एक ही है जो सच्चे परमेश्वर की पहचान उसका नाम देकर कराता है। तेरा परमेश्वर यहोवा उसका पद, वह जिसने बनाया, सृष्टिकर्ता एवं उसका क्षेत्र आकाश और पृथ्वी, निर्गमन 20:10-11। क्योंकि केवल चौथी आज्ञा ही दिखाती है कि किसके अधिकार से 10 आज्ञा दी गई है, दी गई थी। इसलिए इसमें परमेश्वर की मुहर है जो उसकी व्यवस्था से उसकी प्रामाणिकता एवं बाध्यकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में जुड़ी हुई है। वास्तव में परमेश्वर ने शब्द को पाप एवं विद्रोह से विदाग संसार में उसकी शक्ति व अधिकार का अनुस्मारक या चिन्ह के रूप में बनाया है। इसे लगातार एक व्यक्तिगत दायित्व का संस्थान होना था जो एक सलाह से जुड़ा हुआ है। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, निर्गमन 20:8। यह आज्ञा सप्ताह को दो भागों में बांटती है। परमेश्वर ने मानवता को 6 दिन दिए जिसमें वह परिश्रम करके अपना सब कामकाज करे, परंतु 7वां दिन तो किसी भांति का कामकाज ना करना, निर्गमन 20:9-10। आज्ञा कहती है 6 दिन कार्य दिवस हैं, परंतु 7वां दिन विश्राम दिन है, कि यह 7वां दिन विशिष्ट रूप से परमेश्वर का विश्राम दिन है, जो आज्ञा के आरंभिक शब्दों में स्पष्ट किया गया है। तो सबत या विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, जैसे मनुष्यों को अपने शरीर को तारोताजा करने के लिए शारीरिक विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, परमेश्वर अपने उदाहरण को अपनी आज्ञा का आधार बनाता है ताकि हम सबत के दिन विश्राम करें, क्योंकि उसने संसार के प्रथम सप्ताह के अपने कार्यों से विश्राम किया, तो हमें भी विश्राम करना चाहिए। जिस प्रकार परमेश्वर की व्यवस्था वाचा के केंद्र में थी, निर्गमन 34:27 देखें, उसी प्रकार शब्द जो उसकी व्यवस्था के बीच में स्थित है उसकी वाचा में प्रमुख है। परमेश्वर ने शब्द के विषय में घोषित किया कि यह मेरे व उनके बीच चिन्ह ठहरे कि वे जाने कि मैं यहोवा उनको पवित्र करने वाला हूँ, इजेकियल 20:12। और इसका हम तुलना कर सकते हैं यहेजकेल 20:20 से और निर्गमन 31:17 से। इस प्रकार उसने कहा शब्द पालन एक सदा की वाचा है, निर्गमन 31:16। जिस प्रकार यह वाचा परमेश्वर के लोगों के प्रति उसके प्रेम पर आधारित है, व्यवस्था विवरण 7:7-8। उसी प्रकार शब्द उसी वाचा का चिन्ह है, उसके दिव्य प्रेम का चिन्ह है। परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा कि इस शब्द का पालन करें, और जब शब्द बहुत दिनों तक भूल लोगों के द्वारा भुला गया था या वे भूल गए थे, परमेश्वर ने अपने लोगों को, खास लोगों को, चुने हुए लोगों को कहा कि उन्हें शब्द को फिर से स्थापित करने का काम करना है और इसे पवित्रता से मानना है। इसे हम पाते हैं यशाया 58:12 में, और इस तरह हम पाते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को चुना है और कहता है कि तू पवित्र दिन को मानने के लिए स्मरण रखना। भाइयों और बहनों, यह शब्द उसके लोगों और परमेश्वर के बीच में एक चिन्ह है जो लोगों को पवित्र बनाता है। यह शब्द अंतिम दिनों में 3 दूतों के संवाद में कहता है कि तू परमेश्वर यहोवा को उपासना करना जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। 3 दूत का संवाद का बीच में भी यह मिलता है, और शब्द भी यही कहता है कि परमेश्वर का उपासना करना जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जो हमारा सृष्टि करता है, हमें उसी परमेश्वर की उपासना करना है, शब्द का पालन करना है, क्योंकि उसने हमें बनाया है और हमारा देखभाल करता है, हमारा जीवन का रखवाली, हमारा जीवन का निर्वाह करता है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। आइए हम इस शब्द का पवित्र समय आनंद से बिताए, परमेश्वर का स्तुति करे और उसके संगति में आए। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। यह हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे चरणों के पास आते हैं पिता, हमें तेरा वचन से तूने भर दिया है, हमें तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए मदद कर, हमें तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि हम तेरे शब्द को माने और तेरे पवित्रता में प्रवेश हो, तेरे संगति में रहे पिता, और हम एक साथ एकता में रहे और तेरे राह में चले। हमारे पाप अपराधों को क्षमा दे, सबों को तेरा पवित्र आत्मा दे। आमीन।
हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadvent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।